नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जैसलमेर वायु सेना स्टेशन से स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। राष्ट्रपति पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति युद्धाभ्यास का अवलोकन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जैसलमेर वायुसेना स्टेशन से स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। उन्होंने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ करीब 25 मिनट तक हवाई यात्रा की। इस दौरान हेलीकॉप्टर जैसलमेर किले और गड़ीसर तालाब के ऊपर से गुजरा। उड़ान के बाद राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने से उन्हें देश की रक्षा क्षमताओं की जानकारी मिली है। उन्होंने भारतीय वायुसेना और जैसलमेर स्टेशन की टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति पोकरण में भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति युद्धाभ्यास का अवलोकन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर के दौरे पर रहेंगे। वे कायड़ विश्राम स्थली से सुबह 11:30 बजे 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे बांदीकुई से जयपुर के बीच एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर तथा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नौनेरा और परवन अकावद पेयजल परियोजनाओं में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 5 सब स्टेशनों की आधारशिला रखी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश की 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए संचालित किया जाएगा। प्रदेश के 21,800 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन के विस्तार के साथ देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सुगम व्यापार से ये उपलब्धि हासिल हुई है।
राष्ट्रीय बजट पॉलिसी रोड में होता है, इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार की गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत इरादों तक ही सीमित न रहकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के व्यापक उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में आयोजित किसान मेले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार श्री अन्न के उत्पादन तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के प्रयासों से देश दलहन और अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सामरिक शक्ति बढ़ी है और रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की क्षमता में सुधार हुआ है।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर के मिसाइल से लेकर के बुलेट से लेकर के और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक सभी तकनीकी इक्विपमेंट हमने भारत में बनाना शुरू किया है। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना के आधुनिकतम तकनीकी का संहारक क्षमता का प्रदर्शन होगा और निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र पर यह प्रदर्शन होने से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भरोसा, विश्वास और हौसला और भी अधिक भारत की क्षमता और ताकत को देखते हुए। जो देश आतंकवाद का पोषण करने के लिए काम कर रहे थे, आज वो सबसे ज्यादा आतंकवाद की आग में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि NCERT की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर अध्याय शामिल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने NCERT को सभी पुस्तकें वापस लेने और रद्द करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर खेद व्यक्त करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगा।
जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। NCERT के ऊपर उस पर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उस किताब को मनमाने से संलग्न है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे ये गलती ना हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं और मैं मानता हूँ हमारी भारत जैसे बड़े प्रजातंत्र की ही सुंदरता है, न्यायपालिका की आदर्श स्थान है, न्यायपालिका की सर्वोच्च स्थान है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आई स्टार्ट के माध्यम से प्रदेश में 3,450 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। राजस्थान नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए स्टार्टअप्स को विकसित किया जा रहा है।
नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को और गहराई से अपनाने के लिए स्टार्टअप हब्स को टेक रेकिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा और AI लैब्स में लैस किया जाएगा। इसके लिए बजट 2026-27 में बजट आवंटित किया गया है। आई स्टार्टअप एम्बेसडर प्रोग्राम को बजट 2026-27 के अंतर्गत जमीन स्तर तक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु गहन मेंटरशिप के साथ लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव महत्वपूर्ण हैं और सरकार इनका अध्ययन करवाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि पिछले 2 वर्षों में 91 योजनाओं में पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में अधिक प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 5 वर्षों की तुलना में वर्तमान सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर अधिक रही।
इनके समय में GSDP की औसत वृद्धि 10.92% थी। हमारे आर्थिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयास के कारण हमारे कार्यकाल में औसत वृद्धि दर बढ़कर 12.25% हो गई। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो पिछली सरकार के 5 साल में यह दर केवल 5.3% थी, लेकिन हमारे सिर्फ 2 साल में ये बढ़कर के 8.7% हो गई। अगर नीति सही है तो नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट हो तो राज्य तेजी से विकास कर सकता है।
श्री शर्मा ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान प्रदेश की राजस्व आय में भी बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों को प्रदेश की प्रगति का आधार बताया। बालोतरा जिले में आज एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना पचपदरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 25 पर सरवड़ी के पास एक निजी बस और ट्रेलर के टकरा जाने से हुई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। ये बस जोधपुर से बालोतरा की ओर जा रही थी। श्रम संहिताओं पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य श्रम सुधारों में बराबर के भागीदार हैं। श्री मांडविया ने बताया कि 4 श्रम संहिताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया गया है, जो 21 नवम्बर 2025 से प्रभावी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने होली पर्व के लिए 35 विशेष ट्रेनों के 273 ट्रिप संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पहले से चलाई जा रही 30 स्पेशल ट्रेनों के 216 ट्रिप की अवधि बढ़ाई गई है। यात्री भार को देखते हुए 53 नियमित ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 141 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। ये रेलगाड़ियां जोधपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और जयपुर से गोरखपुर, ऋषिकेश, हावड़ा तथा मुंबई जैसे शहरों के लिए चलाई जाएंगी। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भी अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है। साथ ही जगह जगह फाग का रंग छाया हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से डीग में चल रहे ब्रज महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तथा होली के रसिया गाए जा रहे हैं। महोत्सव में आज भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती ने प्रस्तुति दी। श्री गफरुद्दीन को इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। उधर पाली के मंदिरों में भी पूजा अर्चना की गई और भजन गाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जैसलमेर वायु सेना स्टेशन से स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। राष्ट्रपति पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायु सेना के वायु शक्ति युद्धाभ्यास का अवलोकन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अजमेर से 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए AI, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।